सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से अमल होगा। कल से कुटस्थद्रीप प्रकरण में क्या है, प्रवेश किया है। कुटस्थद्रीप प्रकरण में कुटस्थ के विषय में क्या है, विचार चल रहा है और उस कुटस्थ को समझने के लिए पहले वो कुटस्थ जो है तत्वमसी में जो तोम पद है उस तोम पद का कुटस्थ जो है वो कुटस्थ उस कुटस्थ के विषय में कहते हैं। तोम पद का जब विचार करते हैं तो तोम पद में तोम शब्द का जो वाच्य जीव हो जाता है और तोम पद का लक्ष्य वो कौन हो जाता है, कुटस्थ। उसी को समझने के लिए क्या है ये प्रकरण आरंभ हो रहा है। तोम पद का वाच्य और तोम पद का लक्ष्य, तो तोम पद का लक्ष्य कुटस्थ है, तोम पद का वाच्य जीव है, इतना समझना है। क्योंकि कुटस्थ को जो है समझे बिना हम आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि त्वम पद का ज्ञान होने से किस किस रूप में, त्वम पद का जो लक्ष्य कुटस्थ है और त्वम पद का वाच्य कौन है, जीव है, ये समझना है ठीक से हम लोगों को। अर्थात तोम पद का शोधन करने से ही ब्रह्मात्मक क्या क्या है ज्ञान होता है। ब्रह्म और आत्मा का जो एकता का जो ज्ञान है ये तोम पद का क्या है हमें समझना पड़ेगा, उस तोम पद का निर्णय करना पड़ेगा हमको, तब जाकर के इन दोनों का बोध होगा। इसलिए क्या है कुटस्थदीप प्रकरण का आरंभ हो रहा है। इसलिए तोम पद के दो अर्थ है, एक जीव और एक कुटस्थ, मतलब तोम पद का लक्ष्य कुटस्थ है और तोम पद का वाच्य अर्थात वाच्य कौन है, जीव है। उसको दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं हम लोगों को ग्रंथकार। तो कल दृष्टांत में ये बताया था, सूर्य जो प्रकाश दीवार पर है तो जो सूर्य का प्रकाश दीवार पर सामान्य प्रकाश है, किंतु जब दर्पण के द्वारा सूर्य का प्रकाश जब आता है फिर उसी दीवार पर, तो वो प्रकाश क्या है, विशेष प्रकाश है। तो उसमें वो सामान्य प्रकाश और विशेष प्रकाश ये दो दृष्टांत है। तो सामान्य प्रकाश क्या है, कुटस्थ प्रकाश है, और विशेष प्रकाश क्या है, वो चिदाभास रूप प्रकाश है। तो कुटस्थ का ही प्रकाश है किंतु बुद्धि में क्या है आकर के वो क्या है, जैसे दर्पण में आया हुआ प्रकाश, इसी तरह जो है चिदाभास रूप जो प्रकाश है वो कैसा है, वो प्रतिबिंब जैसे सूर्य प्रकाश की जो है दर्पण वाला प्रकाश के जैसा वो चिदाभास प्रकाश है। तो यहां कहते हैं कि उस कुटस्थ को और चिदाभास को समझने के लिए जो दृष्टांत दिया है, उस दृष्टांत में एक सामान्य प्रकाश हो गया कि विशेष प्रकाश हो गया, किंतु सामान्य प्रकाश और विशेष प्रकाश इनमें एक अंतर है। सामान्य प्रकाश जो है विशेष प्रकाश को हटाने के बाद भी रहेगा, और जिस समय में विशेष प्रकाश है उस समय में भी रहेगा। जैसे दीवार पर जो सामान्य प्रकाश है उस प्रकाश के समय में दर्पण का हमने प्रकाश नहीं लाया, तब भी सामान्य प्रकाश रहा। दर्पण के द्वारा का प्रकाश आ गया उस समय भी सामान्य प्रकाश है, और वो दर्पण का प्रकाश हटा देंगे तत्पर भी सामान्य प्रकाश रहेगा। तो फिर मन में ये होगा कि जब विशेष प्रकाश आता है दर्पण के द्वारा, उस समय में उस उतने आकार में विशेष प्रकाश सामान्य प्रकाश से दिखता नहीं है। क्या है, मान लीजिए इतना गोल दर्पण है और उसको हमने फोकस कर दिया दीवार पर, किंतु उतनी जगह बगल वाला जो सामान्य प्रकाश है वो सामान्य प्रकाश उतने दर्पण वाले प्रकाश में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सामान्य प्रकाश हट गया क्या? वहां सामान्य प्रकाश हटा नहीं है, दब गया ये भी नहीं कहना। वहां क्या किया, विशेष प्रकाश का सामान्य प्रकाश के साथ तादात्म्य हो गया। क्या हो गया? तादात्म्य, एक हो गए, उसको अलग नहीं कर पा रहे। ये नहीं कि उतनी जगह सामान्य प्रकाश हट गया, हटा नहीं है वहां पर, वो वहीं पर है, किंतु विशेष प्रकाश ने क्या किया, तादात्म्य किया उस प्रकाश प्रकाश के किसके साथ, सामान्य प्रकाश के साथ तादात्म्य किया। इसलिए विशेष प्रकाश ही मात्र क्या है वहां पर दिख रहा है, विशेष प्रकाश ने तादात्म्य किया इसलिए इसको अलग नहीं कर पा रहे। अच्छा, विशेष प्रकाश हट जाएगा तभी सामान्य प्रकाश रहेगा, तो जो पहले भी था और बाद में भी रहेगा तो फिर वो क्या वर्तमान में नहीं रहेगा? रहेगा ही। जो पहले रहता है और बाद में रहता है वो बीच में भी रहता है, वो हटता नहीं है। इसलिए वहां पर जो मात्र हमें विशेष प्रकाश दिख रहा है उसका कारण क्या है, तादात्म्य, सामान्य प्रकाश के साथ तादात्म्य होने के कारण वहां क्या है, सामान्य प्रकाश नहीं दिख रहा है, वहां विशेष प्रकाश ही दिख रहा है। अब वहां पर हमें यह समझना है सामान्य और विशेष में, सामान्य हमेशा रहेगा ही हमेशा रहेगा, विशेष हमेशा नहीं रहेगा। और वहां सामान्य रहता है ये कैसे पता लगता है, क्योंकि सामान्य के बिना विशेष आ ही नहीं सकता, इसलिए सामान्य रहना जरूरी है। सामान्य प्रकाश है वो सामान्य प्रकाश के बिना क्या है, विशेष प्रकाश नहीं रह सकता है। जैसे सूर्य का सामान्य प्रकाश है वो रहे बिना दर्पण वाला प्रकाश नहीं रहेगा। अब सूर्य प्रकाश ही नहीं रहेगा सामान्य प्रकाश, तो विशेष प्रकाश कैसे रहेगा? हाँ, अब देखिए इन दोनों को आप वहां अलग नहीं कर पाते। कहां पर, जब विशेष प्रकाश आ गया तो वहां उतनी जगह में सामान्य प्रकाश नहीं दिख रहा, तो उसको हुआ क्या, उस सामान्य प्रकाश के साथ तादात्म्य हो गया। अब उसको अलग आप नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए सामान्य जल में गंगा जल क्या आपने डाल दिया, हाँ, आप उसका भेद कर पाएंगे? क्यों, तादात्म्य हो गया उसके साथ। सामान्य जल में विशेष गंगा जल डाल दिया, अब वो तादात्म्य होने के कारण उसका भेद हम नहीं कर पाते। इसी प्रकार सामान्य प्रकाश के साथ विशेष प्रकाश का क्या हो गया, तादात्म्य हो गया, इसलिए उतनी जगह में सामान्य प्रकाश हमें प्रतीत नहीं हो रहा, वहां विशेष प्रकाश क्या है एक ही होकर के तादात्म्य करने के कारण क्या सामान्य प्रकाश नहीं दिखता है। तो इसमें एक और शंका होती है, अब यहां बताएंगे उसके विषय में कि पहले तो दृष्टांत आपको दे दिया, दृष्टांत देने के बाद कोई कहेगा कि हमें तो विशेष ही प्रकाश प्रतीत होता है, सामान्य प्रकाश तो प्रतीत नहीं होता है। तो उसके लिए ग्रंथकार ने उदाहरण दिया, अब अनेक दर्पण ले आइए, एक दर्पण से तो पता नहीं लगेगा आपको, अब चार पांच दर्पण ले आइए, और दर्पण लेने के बाद उसके बीच में जो गैप है अलग अलग थोड़े एक एक फुट पर रख दीजिए, इतना इतना दूर दूर पर क्या अलग अलग दर्पण रख दीजिए, तो दर्पण वाला जो प्रकाश है वो प्रकाश होता रहे, किंतु उस दर्पण के अतिरिक्त दूसरा कुछ और भी दिख रहा है। वो जो दीवार दिख रही है दोनों प्रकाश से दिख रही है, एक सामान्य प्रकाश से भी दिख रही है और विशेष प्रकाश से भी दिख रही है। किंतु ये कब पता लगा, जब अनेक दर्पण आ गए उसके बीच में जो गैप है तब पता लग रहा है कि हाँ सामान्य प्रकाश है, ऐसा प्रकाश है, क्या है हमें मालूम नहीं होता, उसका निर्धारण नहीं कर पाते। एक ही मान लीजिए दर्पण है तो हम सामान्य प्रकाश को हम पता नहीं लगा, मतलब सामान्य प्रकाश है इसका निर्धारण हम करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए चार पद दर्पण ले आइए और फिर करिए, तब पता लगेगा कि उसके बीच में दूसरा जो है दिख रही है दीवार उसका भी कारण है ना, वहां तो सामान्य प्रकाश से दिख रही है और इस दर्पण वाला जो प्रकाश है वहां पर भी प्रकाशित हो रही दीवार, किंतु वहां दर्पण वाले प्रकाश से प्रकाशित हो रही है और बाकी जो दीवार है सामान्य प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। तो कुछ चीजें ऐसे होते हैं विशेष प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और कुछ चीजें ऐसे है कि सामान्य प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे मान लीजिए जो मान लीजिए सूक्ष्म वस्तु है जीवाणु है, तो जो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, वहां पर विशेष प्रकाश से ही क्या वो कीटाणु दिखेंगे, सामान्य प्रकाश से नहीं दिखते हैं। किंतु कहीं कहीं सामान्य प्रकाश से भी क्या है देखते हैं, क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए अंधकार है, मान लीजिए क्या है अंधकार है, अंधकार को दिखाने के लिए प्रकाश की जरूरत है, तो वहां कौन प्रकाशित कर रहा है, हाँ वो सामान्य प्रकाश है। अंधकार जो है अंधकार एक नहीं, हम जो अंधकार को देखने के लिए हम टॉर्च ले आएंगे नहीं, अंधकार को देखने के लिए हम टॉर्च ले आएंगे बोले, ऐसा है क्या
नहीं,
अंधेरे में गए कि तो अंधेरे को देखने के लिए कौन सा प्रकाश काम आया सामान्य नहीं, बोले हमने आंख से देखा, क्या है बोले हम अंधकार को आंख से देख रहे हैं, तो आंख से अंधकार को नहीं देखा जाता, आंख किसको देखती है, इस प्रकाश में जो वस्तु है उसी को आंख देखती है, अर्थात इस चक्षु ये जो इंद्रिया है ना हमारी चक्षु इंद्रिय क्या है जिसके ऊपर प्रकाश आ रहा है उसी को देख सकता है चक्षु, अंधकार को चक्षु नहीं देख सकता है, नहीं हाँ नहीं अंधकार अंधकार को नहीं है, नहीं आंख से नहीं देखते हैं, वहां पर वहां सामान्य प्रकाश देख रहा है, चक्षु अंधकार को नहीं देखता है, चक्षु को देखने के लिए ये प्रकाश की आवश्यकता है, चक्षु प्रकाश के अभाव को नहीं देखेगा, हाँ नहीं समझा आप, समझ लीजिए थोड़ा समझ लीजिए आप, चलो मान लीजिए आप चक्षु को अंधकार, जब आप आंख को बंद कर दिया मन से मन तो जड़ है वो तो देख नहीं सकता है ना, हाँ तो वो कौन है, वो सामान्य प्रकाश, मतलब सामान्य प्रकाश से भी क्या आप देख सकते हैं, कहीं सामान्य प्रकाश से देखा जाता है कहीं विशेष प्रकाश से देखा जाता है, मतलब कुछ ऐसी वस्तु है मैंने चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा देखी जाने वाली वस्तु उसके लिए ये प्रकाश भी चाहिए तभी ये वस्तु दिखेगी है ना, और इस प्रकाश के बिना अंधकार में अथवा अंधकार आप कहेंगे हम चक्षु खुले हैं तो हम उसको देख रहे हैं, किंतु जब हम आंख बंद कर देंगे उस समय भी तो अंधकार है, तो हम कहेंगे मन से देखेंगे तो हम मन तो जड़ है मन तो देख नहीं सकता, किंतु हम अंधकार को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है वहां पर? सामान्य प्रकाश। मतलब सामान्य प्रकाश भी क्या है? प्रकाशित करता है, और विशिष्ट प्रकाश भी प्रकाशित करता है। उसके विषय में दृष्टांत के द्वारा बताएंगे। ये तीसरे श्लोक में हमें बताया जा रहा है। तो द्वितीय श्लोक में ये बताया, अनेक दर्पणों को आप सामने ले आएंगे, उस समय में सामान्य प्रकाश का आपको क्या है? भान होता है, और विशिष्ट प्रकाश का भी भान होता है। दोनों की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो अब उसको इसमें घटा रहे, किसमें? कुठस्थ और चिदाभास, इन दोनों में घटाना। इनको दृष्टांत सिद्धम अर्थम दार्ष्टान्ति के योजयति। जो दृष्टांत दिया है, एक सामान्य प्रकाश और एक विशेष प्रकाश, उस दृष्टांत के द्वारा उसको अभी दार्ष्टांत में घटाना है, योजना कर रहे हैं। चिदाभास विशिष्टानाम, चिदाभास विशिष्टानाम तथानेक धियामसौ, तथानेक धियामसौ संधिं धियाम भावं च, संधिं धियाम भावं च भासयन् प्रविविच्यताम्, भासयन् प्रविविच्यताम्। चिदाभास विशिष्टानाम तथा अनेक धियामसो। देखिए, चिदाभास से विशिष्ट कौन है? बुद्धि। क्या है? चिदाभास से युक्त क्या है? बुद्धि। हाँ, विशिष्ट बुद्धि हो, चिदाभासी युक्त है। तो वो जो बुद्धि धी है, वो बुद्धि को क्या लेना है? जैसे दर्पणस्थ प्रकाश वाली की जगह रखना है उसको, और बिना दर्पण वाला जो प्रकाश है उसको कुठस्थ प्रकाश ले लेना है। चिदाभास विशिष्टानाम अर्थात चिदाभास से जो विशिष्ट कौन? अनेक बुद्धि है, एक बुद्धि नहीं, अनेकों बुद्धि, हजारों बुद्धि है, सैकड़ों बुद्धि है। आसो संधिम धिया धियाम अभावम च, और ये जो बुद्धि है न धी, उस बुद्धि के बीच में, अब अनेक बुद्धि है, घट बुद्धि, पट बुद्धि, छठ बुद्धि, अनेक प्रकार की बुद्धियां हो रही है, किंतु सबकी सब बुद्धियां एक साथ नहीं है, अलग अलग है, टुकड़े टुकड़े में। जैसे अलग अलग दर्पण है ना, तो अलग अलग दर्पण के द्वारा जो जितना प्रकाश है, वो प्रकाश, वो चिदाभास का प्रकाश लेना, और वो जो दर्पण है उसको बुद्धि लेना। क्या करना? दर्पण को बुद्धि समझना, और दर्पण के से माध्यम से जो प्रकाश है उसको क्या लेना? चिदाभास। तो वो जैसे अलग अलग है दर्पण, इसी तरह बुद्धि भी अलग अलग है। घट बुद्धि, पट बुद्धि, अलग अलग बुद्धि हो गई, किंतु घट बुद्धि के बाद पट बुद्धि बनने के लिए समय लगता है। इन दो बुद्धि के बीच में क्या है? एक क्या है? कुठस्थ है, अर्थात कुठस्थ का प्रकाश है। तो घट बुद्धि होने के बाद उस घट बुद्धि में कौन है? चिदाभास है। घट बुद्धि जो हो रही ना, उसमें चिदाभास है, और जहां घट बुद्धि नहीं हो रही कोई भी, वहां पर क्या है? कुठस्थ प्रकाश है, अर्थात चित प्रकाश है, एक चिदाभास प्रकाश है और एक कुठस्थ प्रकाश है। इसी को लेकर बोल रहे, संधिम धियाम अभावम, अर्थात धी मतलब बुद्धि के अभाव में, अर्थात बुद्धियों के बीच बीच में, संधि जो बीच रिक्त काल, अभावम च भाषयन। अब उस घट और पट के बीच में जो है प्रकाशन हो रहा है, उसका प्रकाशन कौन कर रहा है? कुठस्थ प्रकाश प्रकाशन का, अर्थात कुठस्थ का प्रकाश क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है, अर्थात कुठस्थ का जो सामान्य प्रकाश वो प्रकाशित कर रहा है, और बुद्धिस्थ जो है प्रकाश वो कौन सा है? चिदाभास प्रकाश है। इसको अलग अलग करना चाहिए, उसको टीकाकार विस्तृत करके बताते हैं। तथा तेन एव प्रकारेण चिदाभास विशिष्टानां चित् प्रति बिंब युक्तानां कहते हैं। तथा मतलब उसी प्रकार, जैसे वहां पर आपने घटाया था किसमें, सूर्य का प्रकाश और दर्पणस्थ प्रकाश, इन दोनों की जैसे द्वारा घटाया तथा इसी प्रकार यहां पर भी आपको घटाना है। तेनैव प्रकारेण माने उसी प्रकार से यहां पर भी घटाना है। जैसे वहां पर सामान्य प्रकाश से दीवार प्रकाशित हो रही है और विशेष प्रकाश से भी दीवार प्रकाशित हो रही है, इसी प्रकार कहता है कूटस्थ और चिदाभास इन दोनों के द्वारा क्या है ये प्रकाशित हो रहा है। तेनैव प्रकारेण चिदाभास विशिष्टानां चित प्रति बिंबयुक्तानां, चिदाभास विशिष्टानां का अर्थ कहता है चित प्रतिबिंब युक्तानां, चित का अर्थ चैतन्य का प्रतिबिंब युक्त, वो कौन है बुद्धि अंतकरण है ना, वो युक्त है और वो अनेक अनेक धियाम अनेक आसाम, और वो बुद्धि क्या है अनेक है, वो एक नहीं है अनेक है, और उसमें क्या है प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, किसका चैतन्य का कुटस्थ का प्रतिबिंब पड़ा है, वो अनेक है। बुद्धिवृत्ति नाम घट ज्ञानादि शब्दवाच्यानाम संधिम अंतरालम जागृदादो धियाम तासाम एव बुद्धिवृत्ति नाम अभावम च सुषुप्त्यादो, ये कहते हैं। अब मान लीजिए बुद्धिवृत्ति बन गई, घटाकार बुद्धि बन गई, तो घटाकार बुद्धि होने के बाद क्या हो जाएगा, घट ज्ञान हो जाएगा। घटाकार की बुद्धि बन गई तो घट ज्ञान हो जाएगा, तो घट ज्ञान ज्ञानादि शब्द वाच्य, अब घट ज्ञान जो है उस घट ज्ञान शब्द का वाच्य कौन है, घट क्या है, घट क्या है वाच्य, वाच्य का मतलब क्या अर्थ, घट शब्द का अर्थ उसको कहते हैं वाच्य, घट शब्द वाच्य मतलब घट शब्द का अर्थ, वाच्य के जगह अर्थ शब्द लिख दीजिए तो समझ में आएगा, घट वाच्य मतलब घट अर्थ। तो कहे घट ज्ञानादि शब्द वाच्य, घट जो ज्ञान है, घट शब्द घट ज्ञान का जो शब्द है, उस घट ज्ञानादि शब्द का वाच्य वो कौन है, वाच्यानाम वो घटपट, इसका वाच्य कौन घट, घटपट शब्द का वाच्य कौन इत्यादि। तो कहते हैं उनके संधि में, अब घट है उसके बाद पट है उसके बाद चट है, ये अब इसके बीच बीच में अंतर पड़ता है, उस समय में वृत्त्यात्मक ज्ञान नहीं रहता, वहां पर सामान्य ज्ञान रहता, क्या रहता है सामान्य, विशेष रूप से आप ये ज्ञान ऐसा नहीं कह सकते, जैसे घट पट या ज्ञान बोल रहे ना, ये घट पट ज्ञान किसके द्वारा निर्धारित कर रहे हैं, बुद्धि वृत्ति के कारण ही क्या है, आप विशेष विशेष ज्ञान बता रहे हैं, आप उस ज्ञान में भेद कर रहे हैं आप, किंतु सामान्य प्रकाश में ज्ञान का भेद होता नहीं है, बस वो प्रकाशन मात्र होता है, उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये घट ज्ञान है और ये पट ज्ञान है, जो कुठस्थ प्रकाश है वो भेद नहीं करता है, भेद कौन कराता है, बुद्धि भेद कराती ज्ञान में। तो अब जो घट पट के बीच में जो अंतर पड़ा उस समय में भी क्या है प्रकाशन है, प्रकाशित हो रहा है ना, तो कहते हैं जागृत आदि, मतलब जागृत आदियों में जागृत है स्वप्न है सुषुप्ति तीनों अवस्था में ले लीजिए, संधिम अंतरालम जागृत आदो धियाम तासाम एव बुद्धिवृत्ति नाम अभाव, उस समय में क्या बुद्धिवृत्ति का अभाव है। अब मान लीजिए हम कहेंगे कि नहीं हमारे भीतर जो है ज्ञान तो होता रहता है, इसका अंतर कैसे पता लगेगा, तो चलिए अब सीधा सीधा क्या कर दीजिए, अब नींद में चली जाइए, वहां कोई वृत्ति बन गई, कोई वृत्ति नहीं, बुद्धिवृत्ति नहीं वहां पर, किंतु तत्पर भी वहां पर क्या है प्रकाशन हो रहा है, वहां पर कौन प्रकाशन कर रहा है, वो सामान्य प्रकाश अर्थात कुटस्थ, कुटस्थ प्रकाश क्या कर रहा है प्रकाशित कर रहा है, तो वहां कुटस्थ जो प्रकाशित कर रहा है वो भेद रूपेण प्रकाशित नहीं कर रहा है, सामान्य बस प्रकाशन और कुछ नहीं। इसलिए वहां क्या कहा जाता, मैंने कुछ भी नहीं जाना, मतलब क्या है, विशेष रूप से मैंने जाना नहीं। जैसे जागृत में ये घड़ा है, ये पट है, कपड़ा है, जैसे ऐसे जान रहा हूं जागृत में, वैसे नींद में नहीं जान रहे। क्यों? वहां बुद्धि वृत्ति वहां पर नहीं है, इसलिए वहां पर क्या है, सामान्य ही प्रकाश है, कि तो वहां प्रकाशन हो रहा है। यदि प्रकाशन नहीं होता तो मैंने कुछ भी नहीं जाना, इसका प्रकाशन कौन करता, ये कौन बोल रहा है? तो उसका प्रकाशन करने वाला कोई है, तभी तो हम बोल रहे हैं। यदि नहीं होता तो ये भी नहीं बोलना बनता कि मैंने कुछ नहीं जाना, वहां कुछ भी नहीं देखा मैंने, मतलब वहां पर सामान्य रूप से देखा और ऐसे विशेष रूप से कुछ भी हमने देखा नहीं जैसे जागृत में, यही कह रहे हैं। अभावम च, अब वहां पर अभाव को क्या है दिखा रहे, कहा सुषुप्ति आदो, सुषुप्ति में क्या है विशेष ज्ञान का क्या है वहां पर अभाव है, कि तो विशेष ज्ञान का अभाव है, इसको कौन देख रहा था, वो सामान्य प्रकाश, कौन सा, कुटस्थ प्रकाश वो देख रहा था। भाषयन प्रकाशयन आसो कुटस्थ प्रविविच्यताम, इसलिए इस कुटस्थ को क्या है आपको अलग करके देखना है, कि किसे, चिदाभास से कुटस्थ को आपको अलग करके देखना है। यदि विचार करेंगे तो आपको अलग प्रतीत होगा। तो कहते हैं अब ये जो होता है ज्ञान, विशेष जो ज्ञान होता है ना, जैसे आपने क्या है वेदांत परिभाषा सुनी होगी, कि वहां पर ये दृष्टांत देते हैं, मान लीजिए सरोवर का जल है, अब वो सरोवर का जल है, अब मान लो व्यापक है, पूरा व्याप्त है, कि तो वही सरोवर का जल किसी नाली से निकला, तो सरोवर का जल क्या हो गया, नाली के आकार का हो गया, फिर क्यारी में आ गया तो उस क्यारी के आकार का हो गया, और किसी में जाएगा तो उसके आकार का हो जाएगा। तो एक ऐसा होता है, हाँ, खेत में क्यारी जो होती है ना, छोटे छोटे कप्पे बना देना, तो वो जल जैसे जैसे आकार होगा उस आकार को जल क्या होता है, प्राप्त होता है। इसी तरह यहां पर कहते हैं अभी बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य, बुद्धि में चैतन्य है, कुटस्थ चैतन्य का प्रकाश है, वो प्रकाश का है व्याप्त है किसी में, बुद्धि में, ठीक है, वो बुद्धि चली गई किसके माध्यम से, चक्षु माध्यम से, कहां पर, वस्तु पर, वस्तु तक गई। अब वो जो बुद्धि चैतन्य है वो चैतन्य बुद्धि में था, कि तो अब चक्षु के माध्यम से, चक्षु क्या हो गई, नाली हो गई, उस चक्षु के माध्यम से गए तो चक्षु वो वृत्ति के द्वारा चला गया, कौन जो बुद्धिस्त चैतन्य चिदाभास, वो चिदाभास बुद्धिस्त चिदाभास है, वो जैसे ही जा रहा है तो वृत्ति के आकार का हो गया, जैसे जल नाली के आकार का हो गया, उसी प्रकार चिदाभास इस चक्षुरूप नाली से निकला तो वृत्ति बन गई, तो वृत्ति से निकला वो एक वृत्ति अवच्छिन्न क्या हो गया, चिदाभास हो गया, और चैतन्य उसके साथ साथ है, जो मूल चैतन्य जो है कुटस्थ चैतन्य वो भी साथ में, वो तो व्यापक है, वो कभी हटता नहीं है। जैसे दीवार पर जो सामान्य प्रकाश है और जो इसके द्वारा दर्पण के द्वारा जो हमने प्रकाशित किया, वो प्रकाशित करने के बावजूद भी वहां पर ऑलरेडी है, वो इसलिए दिखता नहीं कि वो विशेष प्रकाश क्या कर रहा है, उसके साथ तादात्म्य कर रहा है, इसलिए सामान्य प्रकाश वहां नजर नहीं आता, किंतु उसके नीचे है। तो इसी प्रकार कुटस्थ जो चैतन्य है वो सब जगह, किंतु ये जो चिदाभास रूप जो है, चिदाभास सब जगह नहीं है, वो चिदाभास कहां है, अंतकरण, वो अंतकरण से चिदाभास निकला, निकल के एक वृत्ति हो गई, कौन, घटाकार वृत्ति। तो अब देखिए तीन से जब तक युक्त नहीं होता है, घटा जो है अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और घट अवच्छिन्न चैतन्य, ये जब एक होते हैं तब घट का बोध होता है, ज्ञान होता है। किंतु वहां ज्ञान होता है तो उस ज्ञान में भी क्या अंतर हो जाता है, उस ज्ञान के लिए यहां पर बताते हैं कि वो कैसी उसको समझना है, बाहर और भीतर दोनों समझना है हमको। बाहर कैसे ज्ञान होता है और भीतर ज्ञान कैसे होता है, वो दोनों चीज को समझना है। इसी के लिए यहां पर आ रहा है, क्या है, शंका उठा करके उसका समाधान देते हैं। इदानीं देहांत कुठस्य चिदाभासयोः भेद प्रदर्शनाय। देखिए, भीतर कुठस्थ है और चिदाभास भी है, वही कुठस्थ और चिदाभास बाहर भी है। कैसे है, दिखाना है, वही बात। दीदानिम देहांत कुठस्थ चिदाभास, इस समय में देह के भीतर कुठस्थ और चिदाभास, इन दोनों में क्या करना, भेद करना है। अभी कुठस्थ और चिदाभास में भेद करके दिखाना है, भेद प्रदर्शनाय, उसका भेद प्रदर्शन करने के लिए। देहाद बही अपि चिदाभास ब्रह्मणी विभजते, जैसे देह के भीतर चिदाभास और क्या है कुटस्थ भिन्न है, इसी तरह बाहर भी चिदाभास और कुटस्थ भिन्न है। जैसे भीतर भिन्न है वैसे बाहर भी भिन्न है, उसका विभाजन करके दिखाते हैं। घटैकाकारधीस्थाचित घटमेवावभासयते घटस्य ज्ञातता ब्रह्मा, घटस्य ज्ञातता ब्रह्मा चैतन्येनावभासते चैतन्येनावभासते। तो कहते हैं घटैकाकार धीस्था चित घटमेवावभासते अवभासयेत। कहते हैं जैसे मान लीजिए अंतकरण वृत्ति, अंतकरण की जो है बुद्धि क्या हो गई, घट देश में चली गई, घट देश में चली गई बुद्धि, तो अब उस बुद्धि क्या हो गई, घटाकार हो गई, ठीक है। और उस बुद्धि के साथ कौन है, चिदाभास है, वो चिदाभास भी उसके साथ है, तो वो भी क्या हो गया, घट के आकार का हो गया। उस समय में क्या ज्ञात होता है, चिद घटम एव अवभासयत, वो चिद मतलब चिदाभास, वो चिदाभास क्या करता है, घट को प्रकाशित करता है। कैसे प्रकाशित करता, अयम घट इतना ही प्रकाशित करेगा। चिदाभास ने क्या काम किया, मात्र यह घट है इतना क्या है प्रकाशन किया, किंतु उस घट में इस घट को मैं जानता हूं, ये एक ज्ञान है। न्याय दर्शन में क्या है, ज्ञान के भेद करते हैं, एक व्यवसाय ज्ञान और एक अनुव्यवसाय ज्ञान। व्यवसाय ज्ञान क्या है, अयम घट यह घड़ा है, अब ये घड़ा है, इस घड़ी को मैं जान, इस घट ज्ञान को मैं जानता हूं, ये ज्ञान क्या है, अनुव्यवसाय ज्ञान है। तो अयम घट ये जो है किसने प्रकाशित किया, इसको चिदाभास ने, और उस घट में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को, ये घट को मैं जानता हूं, घटो ज्ञानमान अहम, इस घट का ज्ञान वाला मैं हूं, इसको किसने प्रकाशन किया, कुठस्थ ने, उसी को बता दे। घटस्य ज्ञातता, पहले एक ज्ञान हो गया आयम घट, इस आयम घट इस ज्ञान को किसने प्रकाशित किया, चिदाभास ने, उसके बाद इस घट को मैं जान रहा हूं, इसको किसने प्रकाशित किया, कुठस्थ ने, वही करे। घटस्य ज्ञातता ब्रह्म चैतन्येन अवभासते, हाँ है, परंतु कुठस्थ इस घट को मैं जानता हूं, वो चिदाभास नहीं करेगा, वो कुठस्थ कराएगा। जो बाहरी चेतन ब्रह्म है, चेतन कुठस्थ है, वो मात्र चिदाभास आयम घटे इतना ही प्रकाशित कर, ये घड़ा है, इतना ही करेगा कि तू इतना ही किया कि तू इस घड़े के ज्ञान वाला मैं हूं, वो चिदाभास नहीं करेगा, वो कौन करेगा? कुठस्थ करेगा। जैसे मान लीजिए ज्ञान हो गया, मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं, तो वो चिदाभास थोड़ी ना प्रकाशित करेगा, क्योंकि चिदाभास तो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब कैसे करेगा? नहीं करेगा, वो बिंब से ही होगा, प्रतिबिंब नहीं कर पाएगा, इसलिए उतना ही करेगा, बस आयम घटा इतना ही देखेगा, मतलब वस्तु को दिखाएगा। जैसे प्रकाश इसको दिखा रहा है, इतना ही काम किया इसने दिखाने का, उसके बाद इसको मैं जान रहा हूं, इसको कौन जाना है? वो कुठस्थ प्रकाश ने प्रकाश दिया। टीका देख लीजिए, घटई काकार अधिष्ठा चित, घटस्य कार इव आकारो, कहते हैं घट एकाकार धिष्ठा, अर्थात कहते हैं जो मूल में जो शब्द आया उसका विश्लेषण करते हैं, चिद मतलब चिदाभास, वो चिदाभास क्या हो जाता है? घट के आकार का हो जाता है, जब बाहर वृत्ति के द्वारा निकलता है, अंतकरण वृत्ति जाएगी वहां पर, वहां जाने पर क्या है? घटाकार का हो जाएगा, घटस्य एकस्य आकार इव आकारो, माने घट के आकार का हो जाना, कौन? चिदाभास। एक घट का आकार था और एक चिदाभास था, अब चिदाभास क्या हो गया? घटाकार के रूप में हो गया, घटाकार के आकार वाला हो गया, आकार इव आकारो, आकार के जैसा आकार धारण किया, यस्या सा घटेकाकार, जो मूल में जो शब्द आया ना घटेकाकार, इसका विश्लेषण करके बताया, घटस्य एकस्य आकार इव आकारो यस्या सा घटेकाकार, वो कौन हो गई? धी बुद्धि, बुद्धि घटाकार की हो गई ना, तथा विधाया बुद्धो, अर्थात उस प्रकार वाली जो बुद्धि, अर्थात घटाकार वाली बुद्धि, उस बुद्धि में क्या वर्तमान चिदाभास, घटाकार जो बुद्धि है उस बुद्धि में चिदाभास है क्या? नहीं, क्योंकि बुद्धि में चिदाभास तो रहेगा ही, हाँ उसको वो वर्ती व्याप्ति, पर अब घटा बुद्धि घटाकार हो गई ना, तो बुद्धि में चिदाभास है, वो चिदाभास भी कैसा होगा? घटाकार का ही होगा। जैसे जैसा जल का सरोवर का जल किस आकार का होगा? सरोवर के आकार का है ना, बॉटल में आ गए तो बॉटल के आकार का, इसी प्रकार बुद्धि किस आकार की होगी? घटाकार की होगी, तो चिदाभास भी कैसा होगा? घटाकार का होगा, ये हो गया। उस समय में कहते क्या ज्ञान हो गया फिर, जब चिदाभास भी घटाकार हो गया और बुद्धि भी घटाकार हो गई, तो वहां पर चिदाभास ने काम क्या किया? तो घटम एव भाषा, ये तो वहां पर क्या भान हो गया चिदाभास ने क्या किया? आयम घट, ये प्रकाशन किया किसने? चिदाभास ने, यह घड़ा है, इतना ही क्या किया चिदाभास ने? बताया माने प्रकाशित किया, आयम ये घड़ा है करके। तस्य घटस्य ज्ञातता क्यो धर्मो घटो ज्ञात इति व्यवहार हेतु, यह स घट कल्पनाधिष्ठानेन अर्थात ब्रह्म चैतन्येन साधनभूतेन अवभासते। फिर यह घट है, ये जो हो गया, तो यह घट है, ये होने के बाद इस घट को मैं जानता हूं, ये ज्ञान कहां से आ गया? यह घड़ा यहां तक तो ठीक है, चिदाभास ने प्रकाशित किया कि तो इस घड़ी को, इस घट ज्ञान वाला मैं हूं, ये किसने उत्पन्न किया, ये किसने प्रकाशन किया, उसके विषय में बता दे। तस्य घटस्य ज्ञातता क्यों धर्मो, अर्थात उस घट में जो ज्ञातता है, घट ज्ञान में घट ज्ञातता रहेगी, तो कहते तस्य घटस्य ज्ञातता क्यों धर्मो, जैसे ज्ञान में ज्ञातता, मतलब ज्ञान में ज्ञातता रहती है, मनुष्य में मनुष्यता रहती, एक धर्म है। मनुष्य में मनुष्यता है ना, मानव में मानवता, एक धर्म है उसका। तो घट ज्ञान में घट ज्ञातता, क्या समझे, घट में घट, घट ज्ञान में घट क्या है, घट ज्ञातता एक धर्म है। वो धर्म धर्मी से अलग नहीं होता है। उसको ये समझ लीजिए, इस घड़ी को मैं जानता हूं, इतना ज्ञान समझने के लिए आपको। धर्मो घटो ज्ञात इति, क्या ज्ञात, इस घड़ को मैं जान रहा हूं, घट घट ज्ञानवान अहम, मैंने घड़ी को जाना। ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का ये जो ज्ञान व्यवहार हो रहा है, इस घड़ी को मैं जान रहा हूं, ये जो व्यवहार हो गया, और पहला एक व्यवहार हुआ कौन सा, यह घड़ा है, ये एक व्यवहार, और इस क्या है, घट ज्ञान वाला मैं हूं, ये एक व्यवहार। तो व्यवहार दो हो गए। तो कहते व्यवहार हेतु हो यह स घट कल्पना अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य न, ये जो व्यवहार हुआ ना, ये व्यवहार तो घट कहते हैं घट कल्पना अधिष्ठान। तो घट का अधिष्ठान कौन है, मूल चैतन्य ब्रह्म जिसको कहते हैं घट कुठस्थ चैतन्य, क्योंकि ब्रह्म में सब कल्पित है ना संसार, तो घट भी क्या है, कल्पित है। तो जो घट कल्पना का जो अधिष्ठान कौन, ब्रह्म, और वो ब्रह्म का जो चैतन्य प्रकाश, वही कह रहे हैं ब्रह्म चैतन्य न साधन भूते न अवभासते। उस घट के कल्पना का अधिष्ठान जो ब्रह्म, उस ब्रह्म का जो चैतन्य, वो चैतन्य क्या है, अवभाषित कर रहा है किसको, इस घड़े को मैं जानता हूं, ज्ञातो घट, मुझे घट का ज्ञान हो गया। ये जो ज्ञान का अवभाषण किसने किया, कुठस्थ चैतन्य ब्रह्म चैतन्य, कुठस्थ चैतन्य ब्रह्म चैतन्य अलग नहीं है, बस भीतर है उसको कुठस्थ बोल रहे हैं और बाहर है उसको ब्रह्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो कुठस्थ चैतन्य का ही चाहिए ब्रह्म चैतन्य, किंतु बाहर जो है ब्रह्म चैतन्य और भीतर जो कुठस्थ चैतन्य, ये कोई अलग नहीं है। उसको कुठस्थ कहिए, ब्रह्म कहिए, और वो दोनों एक होने के कारण चैतन्य भी उसका प्रकाश भी एक ही हो गया। तो कहते ब्रह्म चैतन्य न साधन होते न, वहां पर कौन प्रकाशन कर रहा है, मुझे घड़े का ज्ञान हो गया, इस घड़े मुझे ज्ञान हो गया, इसका साधन कौन है, ब्रह्म चैतन्य कूटस्थ चैतन्य, उसने क्या है ये ज्ञान कराया। तो दो जनों ने ज्ञान कराया, चिदाभास ने यह घड़ा है ये ज्ञान कराया, और उस ज्ञान को मैं जान रहा हूं, घटो ज्ञात मुझे घट ज्ञान हो गया, इसका प्रकाशन कुठस्थ चैतन्य ने किया, अर्थात ब्रह्म चैतन्य ने। मतलब दो चैतन्य ने काम, एक प्रतिबिंबात्मक जो चैतन्य उसने एक, हाँ, एक बिंबात्मक चैतन्य बिंबरूप चैतन्य, दोनों ने दो काम किए। या ऐसा क्या करना है, हमें अलग अलग विचार के द्वारा समझना है। कुठस्थ चैतन्य अलग काम करता है और प्रतिबिंबात्मक जो चैतन्य वो अलग काम करता है, अर्थात चिदाभास अलग काम कर रहा है, कुठस्थ अलग काम कर रहा है। जो कुठस्थ करता है दोनों को प्रकाशित, किंतु जो चिदाभास क्या करता है, विशेष ज्ञान को सामने रखता है, और कुठस्थ क्या करता है, उस विशेष ज्ञान को प्रकाशित करता है। यदि चिदाभास कहीं नहीं जाएगा तो वह मात्र सामान्य ही ज्ञान रहेगा, विशेष ज्ञान नहीं होगा, ये इसमें अंतर होता है। इसी विषय में अभी आगे वाला श्लोक आ रहा है। ननु ज्ञातता अवभासक चैतन्य ने एव घटी घट प्रतीति संभवात बुद्धि किमर्थता इति आशंक है। ये कहते हैं जैसे जो घट की ज्ञातता को किसने भाषित किया, प्रकाशित किया, घट ज्ञान को किसने प्रकाशित किया, चिदाभास ने, कुठस्थ चैतन्य ब्रह्म चैतन्य, ज्ञान को घट को प्रकाशित किया चिदाभास ने, और इस घट ज्ञान को प्रकाशित किया कुटस्थ चैतन्य ने। तो कहता है जब आपका कुटस्थ चैतन्य सब जगह व्याप्त है तो फिर बीच में बुद्धि की क्या जरूरत है, उसी से प्रकाशित करिए ना। ये जरूरत क्या है बुद्धि की, जब आपका व्यापक ही है कुटस्थ चैतन्य, तो जैसे ज्ञातता कुटस्थ चैतन्य से आई है इसी तरह घट भी उसी से प्रकाशित करिए आप। अलग से क्यों बुद्धि को रख रहे हैं आप, बुद्धि के बीच में क्यों ला रहे बुद्धि को, बुद्धि को बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है, उसी के विषय में चर्चा करते हैं। ननु ज्ञातता अवभासक चैतन्य न एव घट प्रतीति संभवात। ज्ञातता अवभासक जो चैतन्य अर्थात ज्ञान को प्रकाशित करने वाला जो कुटस्थ चैतन्य, उसी से क्या घट की प्रतीति हो जाएगी, अब होती भी है। तो जो बुद्धि के बीच में क्या जरूरत है, बुद्धि की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि सामान्य प्रकाश क्या है, दोनों को भी प्रकाशित करता है। तो भैया सामान्य प्रकाश यदि दोनों को प्रकाशित कर सकता है तो बीच में बुद्धि की क्या जरूरत है, बुद्धि की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं नहीं, घटस्य ज्ञातता भेद सिद्ध्यर्थ। कहते हैं घट की जो ज्ञातता है उस घट की ज्ञातता में भेद सिद्ध करने के लिए बुद्धि की जरूरत है। क्या है, घट में जो घट की जो ज्ञातता आ गई उसके भेद के लिए क्या है, बुद्धि की जरूरत है। नहीं अभी घट जो है, नहीं जो घट ज्ञान हुआ ना, जैसे मुझे घट का ज्ञान हो गया तो ज्ञान को हमने जाना, घट ज्ञान को हमने जाना, अब घट का अज्ञान इसको प्रकाशन करना है तो बुद्धि क्या करेगी। अभी यहां घड़ा नहीं है मान लीजिए, तो घड़ा नहीं है और घड़ा है तो ज्ञान दो है कि नहीं, घड़े के अभाव का ज्ञान और एक घड़े का ज्ञान, ज्ञान दो हो गया। तो घड़ा नहीं है, यहां घड़ा नहीं है, ये कौन करेगा, बुद्धि जाएगी तभी होगा ना, बुद्धि जाएगी वो कहेगा जब घड़ा नहीं दिखेगी वहां पर घटाकार वृत्ति नहीं बनी बुद्धि की, तो क्या कहेंगे यहां घड़ा नहीं है। तो घड़ा नहीं है ये सिद्ध करने के लिए पहले क्या आकार धारण करना पड़ेगा, घट अभाव का आकार धारण करना पड़ेगा। क्या है, घट अभाव का जो आकार है वो धारण करना पड़ेगा, तब क्या कहेंगे हाँ यहां घड़ा नहीं है। अब घड़ा नहीं है इसका ज्ञान होगा कि नहीं मुझे, तो ये जो घड़े का ज्ञान और घड़े के अभाव का ज्ञान ये भेद कहां से आएगा, बुद्धि से आएगा, बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि नहीं है तो वहां पर ज्ञान का भेद आप नहीं कर सकते। जो ज्ञान का भेद आ रहा है वो किस कारण आ रहा है, बुद्धि के कारण आ रहा है, क्योंकि बुद्धि क्या करती है, हर चीज के आकार को धारण करती है। जैसे घट आकार को धारण किया था तो उस बुद्धि ने क्या किया, बुद्धि के घट अभाव के आकार को धारण किया और तब जाकर के चैतन्य ने क्या किया, उसको प्रकाशित किया। तो ज्ञान के भेद के लिए बुद्धि की जरूरत है, यदि ज्ञान में भेद नहीं करना है तो बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे के विषय में कल कर लेते हैं। हरिओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।